हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है और विशेष स्वागत करने के हमारे बीच में उपस्थित है इस विचित्र कृष्ण प्रभु जी का। हरि हरि बोल। प्रभु जी बहुत ही लंबे अरसे के बाद आए हैं हमारे बीच में और बहुत व्यस्त रहते हैं। स्टाफ क्लास में कांग्रेशन प्रीचिंग के डायरेक्टर हैं और वहाँ भी प्रीचिंग कर रहे हैं और साथ साथ में आपको मालूम होगा ईस्ट दिल्ली में गीता कॉलोनी में पूरा एक सेंटर है जिसमें हजारों हजारों भक्त जुड़े हैं पूरी पूर्वी दिल्ली में, तो सब प्रभु जी के मार्गदर्शन में है। और साथ ही साथ में प्रभु जी VIHE में वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन में फैकल्टी भी हैं, वहाँ जाके भगवद्गीता भागवतम का भी टीचिंग करते हैं और इसके साथ साथ पूरे भारत में भ्रमण करते हैं एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन कोर्सेज भी कराते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि बहुत दिनों से इनसे चल रहा था कि प्रभु जी को निमंत्रण दे रहे थे भला आ नहीं पा रहे थे, तो इनका हम स्वागत करते हैं, इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। साथ ही हम स्वागत करेंगे हर कृष्ण श्यामा कृपा माता जी का भी, ये काफी लंबे समय के बाद आए हैं, तो इनका हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी विख्यात हैं अपने बहुत ही सुंदर प्रवचनों के लिए, सभी शास्त्रों के निचोड़ को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें, साइलेंट कर लें, बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रभु जी के संग का लाभ उठाएं। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पुराण का श्लोक संख्या 17 से 21 तक है, बोर्ड पे 20 और 21 है, 17 से पढ़ना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 9 अध्याय 18 श्लोक संख्या 17 से आरंभ कर रहे हैं। एवं विदेशो परुषे क्षिप्तवाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत कूपे वासाश्रय चाद्य मनुयाना। अनुवाद। ऐसे अप्रिय वचनों का उपयोग करते हुए शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को फटकारा। उसने क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे कुएं में धकेल दिया। 18 तस्याम गतायाम स्वगृहम ययाति मृगयाम चरन प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी ताम तदृशः। देवयानी को कुएं में धकेल कर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। तभी शिकार के लिए निकला राजा ययाति, उस कुएं पर पानी पीने के लिए आया और संयोगवश देवयानी को देखा। 19 दत्वा स्वाम उत्तरम वासस्तस्य राजा विवाससे गृहित्वा पाणिना पाणिम उज्जहार दयापर। अनुवाद। देवयानी को कुएं में नग्न देखकर राजा ययाति ने तुरंत ही अपना ऊपरी वस्त्र उसे दे दिया। उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ कर उसे बाहर निकाला। 20-21 तम वीरम आहोशनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजं स्त्वया गृहतो मे पाणी पर पुरज्जया हस्तग्राहो अपर गृहीता यास्त्वया हि मे एष ईश कृतो वीरा संबंधो नो न पुरुष। शब्दार्थ तम उस वीरम वीर याति से आह कहा औष्णसी उष्णा कवि या शुक्राचार्य की पुत्री ने प्रेम निर्भरया प्रेम तथा दया से सिक्त गिरा वाणी से राजन हे राजा त्वया तुम्हारे द्वारा ग्रहित अंगीकृत मैं मेरा पाणी हाथ पर पुरजया अन्यों के राज्यों का विजेता हस्तग्राह मेरा हाथ थामने वाला अपराह दूसरा मा मत भूत होए ग्रहीताया स्वीकृत त्वया तुम्हारे द्वारा ही निसंदेह मैं मेरा एष यह ईशकृत देव द्वारा नियोजित वीर हे वीर संबंध संबंध न हमारा न नहीं पौरुष मानव निर्मित। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। देवयानी प्रेम सिक्त शब्दों में राजा ययाति से बोली हे परमवीर हे राजा हे शत्रुओं के नगरों के विजेता आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाए क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। तात्पर्य देवयानी को कुएं से निकालते हुए राजा ययाति ने उसके सौंदर्य तथा जवानी की अवश्य प्रशंसा की होगी अतएव उसने यह भी पूछा होगा कि तुम किस जाति की हो तब देवयानी ने तुरंत उत्तर दिया होगा हमारा पहले ही विवाह हो चुका है क्योंकि आपने मेरा हाथ थामा है। पति तथा पत्नी के हाथों को मिलाना सभी समाजों की स्थायी प्रथा है अतएव जो ही ययाति ने उसका हाथ थामा होगा त्यों ही दोनों को विवाहित मान लिया जा सकता है। चूंकि देवयानी वीर ययाति पर मुग्ध थी अतएव उसने प्रार्थना की वह ना तो अपना मन बदले ना किसी अन्य से उसका विवाह होने दे। हरे कृष्णा। सभी वरिष्ठ वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए ये जो सेक्शन श्रीमद् भागवतम में चल रहा है महाराज ययाति और उनका देवयानी के संपर्क में आना और शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि महाराज ययाति के हृदय में देवयानी के प्रति दया थी और दया की भावना से उन्होंने अपना स्वयं का वस्त्र उतार के देवयानी को दिया क्योंकि शर्मिष्ठा ने जब देवयानी को कुएं में धकेला था और उसके स्वयं के वस्त्र पहन लिए थे और इसी बात पे दोनों में झगड़ा हुआ था और जिस वजह से शर्मिष्ठा ने उन्हें धकेल दिया कुएं के अंदर और वो नग्न अवस्था में थी तो महाराज ययाति ने दयावश अपना वस्त्र दिया तो उसकी सेवा की लेकिन ये सेवा सिर्फ सेवा तक ही सीमित नहीं रही ये सेवा भोग में बदल गई और आगे चल के महाराज ययाति किस हद तक गिर जाएंगे कि अपने स्वयं के पुत्र से जाकर यौवन मांगेंगे और अपनी वृद्धावस्था को देने के लिए जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम सेवा के सिद्धांत से आसक्ति ना करके सेवा से आसक्ति कर लें, यानी कि सेवा की क्रिया से आसक्ति कर लें, तो जब सेवा के सिद्धांत से आसक्ति ना करके सेवा की क्रिया से आसक्ति की जाएगी तो वो सेवा की भावना भोग की प्रवृत्ति में बदल जाएगी। तो सेवा हमारा संबंध भगवान से दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के लिए, लेकिन अगर उसके पीछे वो भावना छूट गई, सार छूट गया, जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी को पत्र लिखकर भेजता है, अब पत्र भेजने के लिए एक एनवेलप की आवश्यकता है, पत्र को एनवेलप में डालकर भेजा जाएगा। अब कोई व्यक्ति एनवेलप को तो डेकोरेट करे, सजाए, उसका क्वालिटी बड़े अच्छे तरीके से रखे, लेकिन वो एनवेलप बना है पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए और वो पत्र उसमें डालना भूल जाए, तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, अब वो सेवा तो करें लेकिन उस सेवा के पीछे जो इसेंस है, जो उसका सार है, अगर वो निकल गया उसमें से, तो फिर ऐसी सेवा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, वो अंततः कर्म बंधन बन जाएगा, वो हमें मुक्त करने वाला नहीं रह पाएगा। और यही महाराज ययाति के जीवन में देखने को नजर आता है। तो सेवा की उन्होंने निस्वार्थ भावना से, अपना वस्त्र दिया, हाथ दिया, कुएं में गिरी देवयानी को उठाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन क्योंकि उस भावना को वो मेंटेन नहीं कर पाए, उस सार को मेंटेन नहीं कर पाए, तो अंततः महाराज ययाति उसमें गिर गए। श्री राधा राधिका रमन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलराम की जय। तो जैसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक जगत कारागार की तरह है, एक जेल की तरह है, तो प्राय प्रश्न आता है कि कैसे इसे जेल समझा जाए, क्योंकि ना तो कोई दीवार, ना कोई सलाखे, ना कोई बंधन, ना किसी प्रकार का अड़चन दिखाई देता है। हम बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हैं, आजादी का जीवन जीते हैं। तो यही है बंधन, यानी कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना। ये जेल इसी कारण से ये बंधन बना है, और जब तक ये बंधन रहेगा, जैसा प्रभुपाद जी ने कहा, अगर एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा रह गई तो वापस आना होगा। तो जब तक ये आकर्षण बना रहेगा, तो चाहे हम बाहर से इस शरीर को कृष्ण की सेवा में भी क्यों ना लगाए रखें, इसीलिए इंद्रियों को सेवा में लगाना, यानी शरीर को सेवा में लगाना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बुद्धि को भी कृष्ण की सेवा में लगाना कठिन नहीं है, और अधिकतर हम सिर्फ मन और बुद्धि के धरातल पर ही रह जाते हैं कृष्ण की सेवा में। तो इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगती हैं, बुद्धि शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को समझना, दर्शन को समझना, इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगता है, लेकिन जब तक मन नहीं जाएगा तब तक ये सिर्फ लिफाफा है बिना पत्र के, और वो पूरी तरह से उपयोगी नहीं हो पाएगा। अब एक तरफ यह उदाहरण महाराज ययाति का है, जो देवयानी को बचाते बचाते खुद ही गिर गए। दूसरी तरफ हनुमान जी, जब वो सीता जी की खोज करने के लिए महेंद्र पर्वत से छलांग लगाकर गए और जांबवन ने उन्हें प्रेरित किया कि उनके अंदर इतनी क्षमता है, वो जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं और सीता जी का संदेश लाने का क्षमता रखते हैं, सभी बानरों में ये विचार चल रहा था कि कौन जा पाएगा आगे, तो तो किसी ने कहा कि मैं इतने योजन जा सकता हूं, दूसरे ने कहा मैं इतने योजन जा सकता हूं, जामवान ने कहा मेरी ऐसी क्षमता थी कि मैं पूरी इस जम्बू द्वीप की परिक्रमा कर डालता था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शक्ति चली गई है जब से मैंने सुमेरु पर्वत को लात मारी थी। तो हनुमान जी ने ये निर्णय लिया और हनुमान जी पहुंच गए। अब सीता जी की खोज कर रहे हैं और पहले जब घुसे लंका में तो एक बिल्ली का रूप ले लिया उन्होंने, और बिल्ली का रूप लेकर ताकि दिखाई ना दे खोज कर रहे हैं और किसी भी जगह सीता नजर नहीं आ रही, और खोजते खोजते वो रावण के इनर चैंबर्स तक पहुंच गए जहां पर रावण की पत्नियां सोई हुई थी। और जब हनुमान जी उस स्थान पर पहुंचे तो हनुमान जी उस स्थान पर पहुंच के कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और एक ब्रह्मचारी एक ऐसे स्थान में जहां पर स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में सोई हुई हैं, और हनुमान जी उस अवस्था में पहुंचते हैं, उसे देख रहे हैं उनको, और देखने के बाद अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये धर्म के अनुसार है मेरा यहां होना, क्या ये पाप का कृत्य है, और मैं किस पर्पज से किस उद्देश्य से यहां पर आया हूं, क्या करने आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। और उन्हें लगा सीता इनमें तो निश्चित नहीं हो सकती। तो शुद्धता ही एक व्यक्ति को ऐसे स्थिति में बचाकर बाहर ला सकती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी को रॉक फेस्टिवल में बुलाया गया, वो हिप्पी हिल में, और प्रभुपाद जी जब वहां गए तो प्रभुपाद देख के हैरान हुए उन सबको देखकर, क्योंकि उन सब ने केले की तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या चल रहा है, तो उनको बताया गया प्रभुपाद आज ये बनाना डांस है यहां पे। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा क्यों है, ये बनाना डांस क्यों कर रहे हैं? तो बताया क्योंकि आज इन्होंने एक नया इन्वेंशन किया है कि जब केले का जो छिलका है उसको गर्म करते हैं, जो उससे धुआं निकलता है तो उससे नशा होता है, तो ये इनकी नई इन्वेंशन है और इसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं बनाना डांस करके, और आपको बुलाया है एड्रेस करने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने भारत में कई केले के उपयोग देखे थे, लेकिन ऐसा उपयोग कभी भी नहीं सोचा था कोई ऐसा भी उपयोग करता होगा केले का। तो प्रभुपाद अपना काम करके आ गए, उनको कृष्ण का संदेश देके नेक्स्ट डे एक हिप्पी बहुत बड़ा क्रेट केले का जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी के लिए सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में ले आया, और प्रभुपाद ने कहा यह क्या है? तो बोला ये जगन्नाथ जी के लिए, आपके लिए। तो प्रभुपाद के सेवक ने बोला प्रभुपाद जी लेकिन ये छिलके वापस चाहते हैं, और कहते हैं रोज एक क्रेट लाया करेंगे जगन्नाथ जी के लिए, लेकिन छिलके वापस चाहिए। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ऐसे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे जो कि पूरी तरह से माया की नगरी, और हर कारण था कृष्ण को भूल जाने के लिए। कोई साधारण साधक, कोई साधारण प्रैक्टिशनर अगर ऐसी अवस्था में पहुंचे तो निश्चित रूप से उससे अप्रभावित नहीं रह सकता है। भक्तों के बीच में भी रहते हुए, मंदिर जैसे वातावरण में भी रहते हुए, माया यहां पर भी आके पकड़ लेती है, तो जब माया के बीच में जाकर प्रचार करेंगे तो क्या हाल बनेगा हमारा। और प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे वो उनके बीच में रहते हुए भी कंप्लीटली अनअफेक्टेड थे। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो नित्य तृप्त है और निराश्रिता है। तो जैसे कभी क्राइम हो जाता है कहीं, और जब क्राइम होता है तो जो पुलिस है वो खोज करती है उस क्रिमिनल की उसके फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे, और फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और जो लोग ये फिंगरप्रिंट लेने आते हैं, अब डर ये रहता है कि उनका फिंगरप्रिंट जिसने क्राइम किया है जो उसके फिंगरप्रिंट से मिक्स नहीं होना चाहिए, अन्यथा खोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं ये जो डिटेक्टिव्स हैं, ये लोग ग्लव्स पहनते हैं और ग्लव्स पहनकर वहां पर चीजों को छूते हैं। तो जब ग्लव्स पहनते हैं तो काम तो करते हैं लेकिन कोई उनका खुद का प्रिंट उसके ऊपर छूटता नहीं है, और वो उस व्यक्ति की खोज कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं शुद्ध भक्त कैसा है, वो नित्य तृप्त है और निराश्रिता है। वो इस जगत में रहेगा, लोगों के बीच में सामान्य जैसा दिखेगा, लेकिन जैसे उसने हैंड ग्लव पहना है और अपना प्रिंट नहीं छोड़ेगा। यानी कि उसके बीच में रहता हुआ वो उससे अफेक्टेड नहीं होगा, उसे प्रभावित नहीं होगा और उससे बचा रहेगा। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी भगवान कृष्ण की एक लीला ऐसा देखते हैं कि जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ रह रहे थे और उस समय कई अशुभ लक्षण उन्होंने देखे और भगवान कृष्ण ये जान गए कि इस समय द्वारका के ऊपर कोई संकट आ गया है। और हुआ ये था कि शाल्व ने द्वारका के ऊपर भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में आक्रमण कर डाला था, और क्योंकि कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए थे और उन्होंने अक्रूर जी के साथ वृंदावन को त्यागने के पहले ब्रजवासियों को ये वचन दिया था कि वो ब्रज में वापस आएंगे, अब कृष्ण इंद्रप्रस्थ में थे तो ब्रजवासियों की अपेक्षा थी कि कृष्ण यहां से तो अब ब्रज में निश्चित रूप से आएंगे, तो वो सब वेट कर रहे हैं कृष्ण के आने के लिए। क्योंकि कृष्ण ने ये अब अशुभ चिन्ह देखे और ये जाना कि द्वारका के ऊपर कोई संकट आ गया है, तो बजाय कि ब्रज में जाने के, क्योंकि कृष्ण ब्रज में यहां से जाने वाले थे, जाने के अब वो द्वारका के लिए चल पड़े। और जब द्वारका के लिए चल पड़े तो अपनी रानियों समेत दिन रात चलते 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 जब द्वारका के समीप पहुंचे तो बलराम जी को द्वारका में कोई प्रवेश ना करे उसकी रक्षा में लगाया और उन रानियों को सुरंग के माध्यम से, गुप्त रास्ते के माध्यम से द्वारका के भीतर पहुंचा दिया। और स्वयं कृष्ण, अभी ये शाल्व और प्रद्युम्न जो थे वो युद्ध में सामना कर रहे थे शाल्व का, और करीब करीब ये 27 दिन बीत चुका था, तो 27वें दिन कृष्ण पहुंचे वहां पर। और भगवान कृष्ण ने, शाल्व के पास एक विशेष विमान था और उस विशेष विमान को अपने सुदर्शन से पहले नष्ट किया और उसके बाद शाल्व का भी वध कर दिया। अब कृष्ण जो कि ब्रज में जाने वाले थे लेकिन यहां पर एक सेवा थी भगवान के लिए, तो उन्होंने ब्रजवासियों के पास जाने के बजाय उस अपनी ड्यूटी, उस अपने कर्तव्य को करने की विशेष प्राथमिकता दी। तो अब द्वारकावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं और फूलों के साथ, पुष्पों के साथ कि भगवान कृष्ण प्रवेश करने जा रहे हैं। और द्वारकावासी जब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसी समय नारद जी मन की गति से द्वारका पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि मथुरा में दंत वक्र जो है वो आपको ललकार रहा है और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपसे युद्ध करना चाहता है। तो अब भगवान कृष्ण द्वारकावासी प्रवेश करने के लिए कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सब रिसेप्शन की तैयारी की गई है, तो प्रवेश करने के बजाय उसी समय मन की गति से मथुरा पहुंच जाते हैं और जाके दंत वक्र से युद्ध करना शुरू करते हैं। और दंत वक्र ने ये सोचा था कि जिस समय जरन संघ से युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण ने भीम को भेजा था युद्ध करने के लिए, क्योंकि जरासंघ जो था वो जो गदा युद्ध में निपुण था और भीम भी गदा युद्ध में निपुण था, तो दंतवक्र ने सोचा कि मैं गदा से युद्ध करूंगा क्योंकि ऐसा लगता है कृष्ण गदा युद्ध में निपुण नहीं है, इसीलिए जरासंघ के युद्ध के साथ भीम को भेजा गया था और खुद वो गदा युद्ध में लगता है थोड़े कमजोर है, निपुण नहीं है, तो वो गदा के साथ कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा था। लेकिन जब दंत वक्र ने कृष्ण को चुनौती दी गदा के साथ, और इस समय अब कितने सारे मित्र इंद्रप्रस्थ को त्याग के गए और ब्रज को त्याग के गए, फिर उधर द्वारका के मित्रों को त्याग के गए, तो भगवान कृष्ण इन सब चीजों को त्याग के अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं बजाय कि अपने मित्रों से मिलने के बजाय, तो वहां पर कुछ भोग की बाकारे नहीं है, सिर्फ अपना कर्तव्य और अपनी सेवा के ऊपर प्राथमिकता दे रहे हैं। और फिर कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसे ये दंत वक्र जल्दी मर जाए, और भगवान ने उस युद्ध को ज्यादा लंबा नहीं खींचा, दंत वक्र को वहीं पर तुरंत जल्दी मार दिया, क्योंकि अब इसके बाद कृष्ण ब्रज में जाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम में इसका कोई रेफरेंस नजर नहीं आता कि कृष्ण ब्रज में गए, लेकिन लघु भागवतामृता के अंदर रूप गोस्वामी जी ने इस विषय के ऊपर विस्तार से प्रस्तुत किया है कि कृष्ण ब्रज में वापिस गए, और साथ में पद्म पुराण के अंदर भी इसके ऊपर चर्चा है कि कृष्ण ब्रज में गए, और गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी ने भी कई अध्याय कृष्ण की दोबारा ब्रज वापसी की लीलाओं के ऊपर प्रस्तुत किए हैं। तो अब कृष्ण इस युद्ध को तुरंत समाप्त कर रहे थे, क्योंकि ये दंत वक्र और कोई नहीं, वो जय विजयी है जो कि अपना तीसरा जन्म ले रहे थे, तीन जन्म असुर के लेकर जय विजय वापस लौटने वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने इस लीला को भी समाप्त किया और जय विजय के वापस लौटने की तैयारी प्रस्तुत कर दी और तुरंत उस युद्ध को खत्म करके भगवान विश्राम घाट में गए और वहां पर यमुना जी को प्रणाम किया। यमुना जी को प्रणाम करने के बाद कृष्ण अब वृंदावन में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने तो द्वारका के राजसी वस्त्र पहने हुए हैं और कृष्ण सोच रहे हैं इन राजसी वस्त्र के साथ, राजसी वेश के साथ कैसे मैं ब्रज के अंदर प्रवेश करूं। तो उसी समय दारुका आते हैं और दारुका कहते हैं कि भगवान, ये उद्धव जी ने आपके लिए वस्त्रों को रखा था कि जब आप ब्रज में आएंगे तो शायद आपको ब्रज में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता पड़ी थी। तो कृष्ण देखकर हैरान रह जाते हैं कि किस प्रकार से बन माला, कुंज भेरी और सारे जो कृष्ण के बन वस्त्र थे वो सारे उद्धव जी ने रखे थे। और कृष्ण यहाँ पे उद्धव जी की बड़ी प्रशंसा भी करते हैं कि कैसे उद्धव जी ने सोच के रखा था कि मैं कभी ब्रज में वापस जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण ने जब वचन दिया था जिस समय अक्रूर उनको लेकर गए गोपियों को कि मैं कभी ब्रज में वापस आऊंगा, तो ये कृष्ण ने पहली बार वचन दिया। और दूसरी बार जिस समय मथुरा में कंस की मृत्यु हुई तो अन्य गोप आदि भी आए थे और उन गोपों ने भी कृष्ण को कहा कि आप चलो वापस अब ब्रज में, अब आपका काम हो गया यहां पे। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे अभी कुछ और चीजें भी करनी है, कुछ और भी अभी बाकी है असुर, तो थोड़ा वो भी निपटा कर फिर मैं वापस आऊंगा। और तीसरी बार जब उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा था गोपियों को ज्ञान देने के लिए, तो उद्धव जी ने भी कृष्ण के बिहाफ पे आश्वासन दिया था कि कृष्ण वापस आएंगे। तो तीन बार एक प्रकार से कृष्ण वचन दे चुके थे मैं ब्रज के अंदर वापस आऊंगा, लेकिन कृष्ण ब्रज में अभी तक लौटे नहीं थे। हालांकि कृष्ण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सत्यों में सबसे बड़े सत्य स्वयं कृष्ण हैं और उनके ऊपर सारे सत्य आधारित हैं। तो वो कृष्ण जो सत्यों में सबसे बड़े हैं और सारे सत्य उन कृष्ण के ऊपर आधारित हैं, अब वो कृष्ण अपने वचन को अभी तक निभा नहीं पाए थे। जिस समय महारानी कुंती कृष्ण को जाता हुआ देख रही थी हस्तिनापुर से, तो महारानी कुंती कृष्ण को आके कहती है कि सूर्य हो सकता है अपनी चमक खो दे, चंद्र हो सकता है अपनी शीतलता को खो दे, लेकिन कृष्ण आप अपने गुणों को कभी खोएंगे नहीं। और यही श्रीमद् भागवतम का आरंभ है, सत्यम परम धीमहि, कि वो परम भगवान जो है वो सत्यता के भरे हैं, उनका एक गुण है ट्रुथफुलनेस, उनकी ये क्वालिटी। और दसवें स्कंद के अंदर देवता भी भगवान कृष्ण को सत्य व्रतम कहकर पुकारते हैं, सत्य परम कहकर पुकारते हैं। और श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अंदर जब भूमि देवी भी विलाप कर रही थी तो भूमि देवी भी विलाप करते वक्त ये बात कहती है कि कृष्ण, क्योंकि आप मेरे ऊपर से अब अपने चरणों को अप्रकट कर चुके हैं, अब आप यहां नहीं है, इसी कारण से मैं अपने सारे गुणों को खो रही हूं। तो यानी सारे गुणों का जो आरंभ है वो भगवान कृष्ण से ही रहता है, लेकिन यहां कृष्ण ने तीन बार वचन दिए थे और कृष्ण प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी और अन्य पुराण इस बात का रेफरेंस देते हैं कि कृष्ण ब्रज में फिर से जाते हैं। पहले स्कंद के 11वें अध्याय के अंदर भी, श्रीमद् भागवतम के अंदर भी दो शब्द आते हैं जहां पर आचार्य कहते हैं ये रेफरेंस है कृष्ण के ब्रज में जाने का, जहां पर द्वारकावासी कृष्ण को रिसीव कर रहे हैं और द्वारकावासी कहते हैं कि जब आप कुरुओं के पास और मधुन के पास जाते हैं तो एक एक युग, एक एक क्षण, एक एक युग के प्रतीत लगता है। तो आचार्य कहते हैं ये जो मधुन शब्द है ये उपयोग किया गया है ब्रजवासियों के लिए, तो इसका मतलब एक हिंट दिया गया है कृष्ण ब्रज में गए, लेकिन उसको एलोबरेट नहीं किया गया। आचार्य कहते हैं क्यों नहीं इतना विस्तार से प्रस्तुत किया गया भागवतम में कि कृष्ण ब्रज में जब गए जबकि अन्य आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं इस बात को। तो गोपी प्राणधन प्रभु कहते थे कि जो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी जैसे अन्य आचार्यों ने जितने भी शास्त्र प्रस्तुत किए हैं ये श्रीमद् भागवतम का ही विस्तार है। ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम से अलग नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम का विस्तार प्रेजेंट किया गया। तो उसी प्रकार से जब रूप जीव गोस्वामी इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि कृष्ण ब्रज में प्रवेश करे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने इस बात को क्यों नहीं प्रेजेंट किया? तो आचार्य कहते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के शुक हैं और वो इस बात को प्रस्तुत नहीं कर सकते कि कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए। और अगर वो कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए ऐसा कहेंगे, क्योंकि जब कृष्ण ब्रज में गए रूप और जीव गोस्वामी इस बात को लिखते हैं कि ब्रजवासी वहां से गोलोक वृंदावन चले गए, उसके बाद से ब्रजवासी वहां से गोलोक वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए और सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। और परीक्षित महाराज का जो विशेष जो लगाव था वो ब्रजवासियों के प्रति नहीं, वृष्णियों के प्रति था, क्योंकि वो पांडवों के वंशज हैं। और जो वृष्णि जो है भगवान के धाम गए तो वो एक बड़े असभ्य तरीके से गए, बाह्य रूप से देखने वाले, यानी एक बड़े निशंस तरीके से उन्होंने भगवान के धाम में प्रवेश किया। तो वृष्णियों का प्रवेश करना भगवान के धाम में एक निशंस था, लेकिन ब्रजवासियों को भगवान ने ऐसे ही भेज दिया गोलोक वृंदावन के अंदर। तो अब ये जब बात सुखदेव गोस्वामी कह सोच रहे हैं कि अगर मैं ये प्रस्तुत करूंगा तो निश्चित रूप से परीक्षित महाराज के मन में पक्षपात की भावना आ सकती है कि भगवान ने ब्रजवासियों का पक्ष क्यों लिया और वृष्णियों को इस प्रकार से सताकर क्यों भेजा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए इस कारण से सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ हिंट दिया और उस बात को विस्तार से प्रेजेंट नहीं किया और उस बात को हाइड कर लिया कि कृष्ण जो है ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस बात को हिंट देकर खत्म कर देते हैं। अब यहां पर जो हम लेसन ले रहे हैं इस पूरी लीला से, भगवान कृष्ण भी ब्रजवासी प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वारकावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो वर्ज पे हैं, बिल्कुल समीप है उनसे मिलने के लिए, प्रवेश करने ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने उस प्रवेश करने के आनंद को पाने के बजाय अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी है और उस कर्तव्य को निभाने के लिए उस आनंद को त्याग दिया। उसी प्रकार से एक उन्नत भक्त और एक स्ट्रगलिंग साधक के बीच में यही डिफरेंस है। एक एडवांस डिवोटी की आसक्ति सेवा के सिद्धांत से रहती है और एक स्ट्रगलिंग साधक सेवा की क्रिया से आसक्ति रखता है। जैसे डीटीज की ड्रेसिंग के लिए ब्लू टैग यूज किया जाता है, तो ब्लू टैग का विशेषता है कि आप उसको कभी लगाएं, जिस भी सरफेस पर लगाकर उसको आप निकाल लें उसका इंप्रेशन नहीं रहता पीछे से, आप किसी भी जगह उसे उपयोग कर सकते हैं। कितना भारी से भारी गहना भी भगवान को पहना दे वो रुक भी जाता है और साथ में जब उसको निकाला भी जाए तो वो सरफेस प्रभावित नहीं होता है। और दूसरी तरफ जब हम पोस्ट से कोई पत्राचार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो एक उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं। अगर स्टैंप लगा हुआ एक पैकेट आपके पास आए और अगर आप उस स्टैंप को निकालना चाहें तो रिजल्ट क्या होगा, वो पूरा का पूरा एनवलप फट जाता है या स्टैंप फट जाता है, एक चिपका हुआ स्टैंप निकाला नहीं जा सकता। उसी प्रकार से एक स्ट्रगलिंग साधक जो कि सेवा के सिद्धांत से अटैच नहीं, सेवा की क्रिया से आसक्त है, अगर आप उसकी सेवा की क्रिया को बदलो तो यानी उस स्टैंप को एनवलप से निकालने के बराबर है। आप उसकी सेवा की क्रिया में चेंज लेकर आओ, कुछ परिवर्तन लेकर आओ, उसको कुछ सेवा की क्रिया बदलने के लिए बोलो, तो उसकी अटैचमेंट प्रिंसिपल ऑफ सर्विस से ना होके उसकी अटैचमेंट उस सेवा की क्रिया से है, अब वो एनवलप की तरह फट जाता है। लेकिन एक एडवांस डिवोटी का मतलब है वो एक सेवा की क्रिया से नहीं, सेवा के सिद्धांत से आ सकते हैं। और सेवा के सिद्धांत से आसक्त होने का मतलब है ब्लू टैग, आप कहीं पर भी लगाइए, कहीं पर भी उसको रीयूज कीजिए, उसको किसी भी अवस्था में ले जाइए, किसी भी शेप में दे दीजिए, वो हमेशा रीयूजेबल रहेगा। यानी कि एक एडवांस डिवोटी सेवा करेगा लेकिन सेवा की क्रिया से आसक्त नहीं, वो सेवा के सिद्धांत से आसक्त है। जैसे दक्ष प्रजापति और नारद मुनि का विवाद, जब दक्ष प्रजापति का दूसरा जन्म हुआ तो नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को प्रचार किया और उन्हें ब्रह्मचार्य की शिक्षा देकर उनको तपस्या करने के लिए भेज दिया। और यहां पे दक्ष प्रजापति नारद जी से बड़े नाराज हो गए। और दूसरी बार दक्ष प्रजापति ने पुत्र उत्पन्न किए और नारद जी ने उन्हें कहा, देखो तुम्हारे बड़े भाई तो चले गए तपस्या करने, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम भी जाओ यहां से मुक्ति के मार्ग के ऊपर। और वो भी चले गए। और अब दक्ष प्रजापति, अब नारद जी भी कृष्ण के प्रति सेवा कर रहे हैं जीवों को मुक्त करने की, और दक्ष प्रजापति को भी ब्रह्मा जी ने सेवा दी थी प्रजा के निर्माण करने के लिए। दोनों अपनी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति अपनी सेवा की क्रिया से आसक्त थे कि नारद जी को भी श्राप देने लगे कि तुम्हें घर नसीब नहीं होगा, तुम कभी भी घर में टिक नहीं पाओगे। तो उधर से नारद जी हम देखते हैं जो कि सेवा के सिद्धांत से आ सकते हैं। तो चाहे दक्ष प्रजापति उन्हें श्राप भी क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अपना कर्तव्य है उसको त्याग नहीं रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि सेवा भावना का मतलब ये नहीं कि जो मुझे पसंद हो। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बोला, अब तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ, तो उद्धव जी ने यह नहीं कहा जहां आप जाएंगे मैं वहां जाऊंगा, लेकिन वो भगवान के आदेश का पालन करते हुए बद्रिक आश्रम भी चले गए। इसीलिए साधना भक्ति में एक सबसे बड़ी कठिनाई आती है हमारे जीवन में कि जैसे एक मछुआरा अगर वो जाल बिछाए मछली को पकड़ने के लिए, और अगर ये जाल गहराई में नहीं जाए सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहे तो वो मछलियां तो पकड़ेगा, लेकिन जो समुद्र की गहराई के अंदर मछलियों की गुणवत्ता है वो उसे कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर हम साधना के नाम पे सिर्फ अपनी योग्यताओं का ही विस्तार करते रहें, यानी अपना फैलाव ही करते रहें, लेकिन उसकी गहराई को छूने की कोशिश ना करें, तो अब यह सबसे बड़ी कठिनाई क्या देगा कि कहने को बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन वो गहराई ना होने की वजह से हम अब गहराई को प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम है। हो सकता है कई मील आप चले और कुछ भी प्राप्त ना हो, लेकिन अब वो कई मील चलने की गहराई में जाने के बाद, उस समुद्र के अंदर गहराई में जाने के बाद, हो सकता है एक ही रत्न मिले लेकिन वो एक ही रत्न ऊपर की मछलियों से बहुत बड़ा योग्य है, वो बहुत बड़ा मूल्य रखता है, उसकी बहुत बड़ी योग्यता है। तो हम सब मोटिवेट होते हैं भक्ति में जब हम अपना विस्तार करते हैं। अब विस्तार करने का मतलब है यहां पे अपनी योग्यताओं को हासिल करना, स्किल्स को हासिल करना, अपने फॉलोवर्स को बढ़ाना, लेकिन इससे हमारा मन प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि मन को रस चाहिए, इंद्रियां और बुद्धि को एंगेजमेंट चाहिए, लेकिन मन को रस चाहिए, और मन वहां जाएगा जहां उसे रस मिलेगा। तो अब वो मन को रस कैसे मिलेगा साधना भक्ति में, जब तक वो अपनी डेप्थ नहीं बढ़ाएगा। अगर हम सिर्फ विड्थ बढ़ाने में ही लगे रहे, डेप्थ को बढ़ाने में भूल गए, तो विड्थ तो बढ़ जाएगी लेकिन डेप्थ ना बढ़ने से अब उसका रस नहीं प्राप्त करेंगे। और जब तक भक्ति का रस नहीं प्राप्त करेंगे, अब ये मानसिकता क्या होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ का पर्पस है आप अपने आप को साबित करें, तभी आप उस कॉर्पोरेट लाइफ में मेंटेन रह सकते हैं। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आप प्रूव कीजिए अपने आप को। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रूव करने के लिए नहीं, ये इंप्रूव करने के लिए बनाया गया। तो हम यहां पर, हमको इंप्रूव करना है। अब यहां पर हम इंप्रूव करने के बजाय वो सेम कॉन्शियस जो कि कॉर्पोरेट लाइफ की है प्रूविंग, हम यहां भी अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। अब प्रूव करने का मतलब है अपनी विड्थ बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंप्रूव करने का मतलब है डेप्थ बढ़ाना। अब डेप्थ बढ़ाने के लिए हमको इसके अंदर डीप जाना पड़ेगा। तो इसलिए चाहे हमारे इस साधना भक्ति के मार्ग में, और विशेषता एक संस्था के अंतर्गत, बहुत सारी चीजें हमारा मन देखेगा, पढ़ेगा, और कई बार ये मन नेगेटिविटी ज्यादा इकट्ठी करता जाता है, क्रिटिकल होता जाता है, और भक्ति में प्रगति करने के बजाय उसमें पीछे होता जाता है। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि इस डेप्थ को बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है. हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी है. जो ये मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है ये हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है. चाहे आप नए हैं, चाहे आप पुराने हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप ओल्ड हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, इस मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर हर साधक को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया है कृष्ण से संबंध विकसित करने के लिए. अब इस मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद जो हम करते हैं वो मात्र एक डिटेल ही है, लेकिन इसका जो जूस है वो इस मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर डाला गया. तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमने फोकस विड्थ बढ़ाने पे किया तो हमारा कृष्णा कॉन्शियस लाइफ मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद शुरू होता है. लेकिन जो व्यक्ति डेप्थ बढ़ाने में फोकस कर रहा है उसका कृष्णा कॉन्शियस लाइफ इस मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर स्थापित होता है. और जब वो मन को वहां रस मिलना शुरू होता है तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा, ये फिर किसी जगह नहीं जा सकता. तो इसीलिए सिर्फ मन, सिर्फ बुद्धि और इंद्रियों को लगाने से ही हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे. अगर हम 12 चैप्टर गीता की ओर जाएं और 12.8 को देखें तो भगवान कृष्ण वहां मन की बात करते हैं. मन नहीं लगने पर बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि नहीं लगने के ऊपर इंद्रियों लगाने की बात करते हैं, इंद्रियां नहीं लगने पर कर्म फल देने की बात करते हैं, लेकिन इन सबको करने से कृष्ण कहते हैं मन लगेगा. तो अल्टीमेटली जो कृष्ण कॉन्शियस की सक्सेस है वो इस मन को कृष्ण भावनामृत में लगाने के अंदर है. और वो ना लगने के कारण ययाति महाराज जैसे उदाहरण प्राय होते रहेंगे कि सेवा की सहायता से हाथ बढ़ाया लेकिन वो देवयानी ने ययाति महाराज का हाथ खींच लिया और ययाति महाराज उसमें ही बहते चले गए. और पास में हम ऐसे कई उदाहरणों को देख चुके हैं अपने वर्तमान समय में भी. बड़े बड़े साधु भी जो लोगों की सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाने गए लेकिन माया के द्वारा खींच लिए गए. उद्देश्य गलत नहीं था लेकिन क्योंकि डेप्थ नहीं थी, मन की गहराई कृष्ण में नहीं लगी थी, इस कारण से वो हाथ खींचा चला गया और ययाति महाराज जैसे वो उदाहरण बन बैठे. तो अगर हम इस उदाहरण को ना दोहराना चाहें तो सिर्फ मन, सिर्फ बुद्धि और इंद्रियों से हटकर इस मन को कृष्ण भावनामृत में लगाने के लिए इसका रस ढूंढना होगा. तो सरल से बैठ के कृष्ण कथा को सुनना ये मन का रस है. मन को ये समझाना होगा कि ये है तुम्हारा रस. नाम जप करना ये रस है, भगवान का दर्शन करना ये मन का रस है. तो बजाय हम ये सब करने के हम रस बाहर ढूंढ रहे हैं. तो चाहे आप मछुआरे की तरह लंबा जाल बिछाइए लेकिन ये लंबे समय तक पर्पस सॉल्व नहीं करेगा हमारा. और इस शिक्षा को हम इन श्लोकों से प्राप्त कर रहे हैं. यही विराम देंगे. कोई प्रश्न है तो आप या कोई टिप्पणी वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं इस विषय में देना चाहें.
थैंक यू प्रोजी, बहुत ही अच्छा लेक्चर था. लेक्चर में हमने सुना कि डेप्थ के ऊपर बहुत आपने एम्फेसाइज किया है, तो मैं विचार कर रहा था कि विड्थ की क्या इंपॉर्टेंस है.
विड्थ भी डेप्थ बन सकती है.
मतलब प्रोपाद जी ने तो प्रीचिंग मूवमेंट के लिए बहुत एम्फेसाइज
किया, प्रीचिंग मूवमेंट पे एम्फेसाइज किया है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने यही नहीं कहा कि सिर्फ प्रचार करना है.
तो मैं इसी
उसमें प्रभुपाद जी अपने आप को भी प्रचार करने के लिए हमें कह रहे हैं. अनलेस हम खुद कन्विंस्ड हो हम किसी को कैसे प्रीच कर सकते हैं. और वो हम उतना ही दे सकते हैं जितना है हमारे पास. तो इसीलिए हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियस में ले तो आते हैं लेकिन अब उनको डेवलप करने के लिए खुद को भी तो डेवलप करना होगा. और हम सबका अनुभव है कि लाना मुश्किल है लेकिन बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है. अब ले आए, अब आरंभ में हम जिसको प्रचार करके लाते हैं वो कहता है आपके जो शब्द हैं वो अमृत के समान हैं, आप जो बोलते हैं अमृत टपकता है, 6 साल बाद वो बोलता है कि जो आप बोलते हो मुझे समझ नहीं आता। और हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को नजर आती है आज पूरे वर्ल्ड में। मैं सिर्फ इस्कॉन की बात ही नहीं कर रहा हूं, आज कोई भी सबॉर्डिनेट अपनी अथॉरिटी के साथ नहीं रहना चाहता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फिनोमेना है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा, हमें अपनी क्वालिटीज अलग अलग समय में अलग अलग क्वालिटीज का भी प्रदर्शन करना होगा ना। तो लाने के लिए एक प्रकार की क्वालिटीज चाहिए थी, अब बनाए रखने के लिए अलग प्रकार की क्वालिटीज चाहिए, और उनका और अपना विकास करने के लिए अब दूसरे प्रकार की क्वालिटीज चाहिए। तो जब हम खुद डेवलप नहीं होंगे तो आप ला पाएंगे बस, और उसके बाद हो सकता है वो पुण्यवान हो तो टिके, हो सकता है उन्हें किसी शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाए तो टिके, लेकिन बनाए नहीं रख पाएंगे अगर हम खुद डेप्थ में नहीं है। तो वो मेंटेन करने के लिए डेप्थ चाहिए। तो प्रभुपाद ने सिर्फ ये, प्रभुपाद ने ये भी कहा जो आप कोट कर रहे हैं कि डोंट मेक मी अलेक्जेंडर, ये भी शब्द प्रभुपाद जी के हैं। तो अलेक्जेंडर क्या था, एक देश जीतता था दूसरे पे जाता था पिछले वाला आजाद हो जाता था, ये अलेक्जेंडर था। और प्रभुपाद ने कहा डोंट मेक मी अलेक्जेंडर, तो इसका मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं प्रीच करना है तो उनको डेवलप भी करना है, और डेवलप हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। जब तक वो जेन्युइन क्वालिटीज हम में नहीं है, अगर हम होली नेम से अटैच नहीं है, हम गुरु के मिशन से अटैच नहीं है, हम भागवतम से अटैच नहीं है, तो हम किसी को कैसे वो अटैचमेंट दे देंगे। इसीलिए लोग पढ़ पाते हैं दूर से, व्यास आसन में कोई गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन जब करीब आएंगे तो फिर अब त्रुटियां नजर आएंगी। और हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं नॉलेज देके कि वो हमको जज कर सकें। प्रभुपाद का ये सिस्टम है जिसमें पूरा एक्सपोजर है। अब एक नया से व्यक्ति भी, नया व्यक्ति भी नॉलेज को रखता है, वो हमें जज कर सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज सीनियर जूनियर्स का हर रिलेशन ब्रेक कर रहा है। तो कहीं ये चर्चा का विषय है, मैं कंक्लूजन नहीं प्रेजेंट कर पा रहा हूं, वो योग्यता नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय है कि कहीं हम ओवर एम्फेसाइज विड्थ को तो नहीं कर रहे, क्या नंबर्स ओवर एम्फेसाइज तो नहीं है, कहीं क्वालिटी भूल गई, बुलाद तो नहीं दी गई पीछे। तो जहां क्वालिटी होगी वहां विड्थ अपने आप आएगी, जहां हनी है वहां हनी बीज अपने आप आएंगी। लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है, सिर्फ आप विड्थ की बात करें, सो यू वोंट बी एबल टू मेंटेन इट, और हमें खुद रस नहीं नजर आएगा। और मान लीजिए एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए आदर्श है, अगर वो कृष्ण भावनामृत से पीछा हट जाए, ये कितना बड़ा सेटबैक है जिनको आप प्रीच कर लाए उनके लिए। अब ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर रह सकते हैं वो, क्योंकि उनके लिए वो रोल मॉडल था। तो अगर रोल मॉडल शेक हो गया तो बाकी लोगों के लिए क्या फेथ है इस प्रोसेस में। तो ये भी तो प्रीचिंग ही है, अपने आप को बनाए रखना, और बनाए नहीं रखना, हैप्पीली बनाए रखना। एक हम क्रिटिकल होके, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है जीवन जीने का, तो पड़े हैं मंदिर में, एक तो ये तरीका है ना, और दूसरा हैप्पीली बनाए रखना। व्हाई वी आर हियर, बिकॉज वी लव टू चैंट। व्हाई वी आर हियर, बिकॉज वी लव टू सर्व। तो ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, स्टिल डिवोटीज कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन इट।
थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि मतलब जो रस जो है मेन, तो लेकिन प्रभु जी रस आने में तो समय लगता है, तब तक जब तक रस नहीं आता तब तक हमें कहीं ना कहीं इंद्रियों और बुद्धि को सेटिस्फाई करना पड़ता है ताकि हम टिके रहें, क्योंकि अगर टिकेंगे नहीं तो रस कैसे आएगा। तो तब तक हम क्रिया से थोड़ा सा आनंद, मतलब एक वो उसको रस आने में तो समय लगे, एकदम से रस तो आएगा नहीं।
ये बहुत बड़ी बेट है प्रभु, ये बहुत बड़ी बेट है। आप अगर कहते हैं कि रस नहीं आया तो मैं रस ढूंढ रहा हूं अपने फॉलोवर्स में, रिसोर्सेज में, ये आपको ड्रैग कर ले जाएगा, आप मन का रस कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने साथ में ये भी कहा उस रस को पाने में कई मील चलना पड़े, वो आसान नहीं है, लेकिन अगर एक भी ज्वेल मिल गया परम दृष्टवा निवर्तते, तो एफर्ट्स होने चाहिए उस, और एटलीस्ट गोल क्लियर होना चाहिए। तो वर्तमान में हो सकता है वो रस नहीं है, लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हमारे एफर्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम क्यों हैं यहां पर। अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए 99.9% लोग क्या आंसर देते हैं कि हम क्यों आए हैं यहां पर, क्या लेने प्राप्त करने क्या आए हैं यहां पे। अगर इस प्रश्न का ही आप डटोले अपने अंदर तो बड़े भयानक उत्तर निकल कर आएंगे।
पर शुरू शुरू में तो प्रभु जी हम अट्रैक्ट होके आते हैं ना, शुरू शुरू में तो लाइक हम लाइक उसी क्रियाओं से अट्रैक्ट होके आते हैं।
लेकिन किस चीज ने आपको आकर्षित किया? आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस ने आकर्षित किया है, लेकिन हमने सोचा कृष्ण भावनामृत मतलब विड्थ। ये हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। अट्रैक्शन उससे नहीं हुआ है आपको, अट्रैक्शन किसी की प्योरिटी ने दिया है आपको, हमने उसे गलत परिभाषा दे दी है। सो बैक टू द बेसिक्स। हाँ जी,
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रू फॉर पावरफुल लेक्चर एंड पावरफुल क्वेश्चन आंसर्स। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस प्रू। फर्स्ट वन वाज, आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि सेवा की प्रक्रिया से कोई अटैच है या सेवा के सिद्धांत से है। तो श्री राजीव गोस्वामी किसी संदर्भ में बताते हैं कि तीन तरीके की भक्ति होती है। उसमें एक भक्ति होती है आरोप भक्ति। आरोप भक्ति मीन्स we are doing services but for our own sake or not for the benefit of guru and vaishnavas. Is this the same?
The explanation seems same.
Continuing this question, sometimes in the preaching moment we also require to produce the results, but if the leader start thinking that okay, if I change the service of one devotee, if he is advanced he will not retaliate, but at the same time he will not produce the result. I mean, just like digging 1 feet on a 10 places rather than digging 10 feet on a 1 place, that can bring water. But if we change the person from one service to another, but that will not bring the fruits to the movement. What do you say about it?
Well, it's a very specific question. I don't think I can answer generalized it. I mean, it has to be understood in a detail what we are talking behind this. I mean, you can't generalize this. It's very situation specific. Somebody who's successful in one vertical doesn't mean he'll be successful in all the verticals. It works across the globe, not only in spiritual science, even in the material world also. Some people are SMEs, subject matter experts, and they are very expert in their verticals. Doesn't mean they are successful everywhere. I don't know. I mean, we need to speak in detail about it.
One small question, clarification regarding this. The Narad Muni got the curse from the Daksha that he will not stay at a one place or by the Kal Kanya. Because in the fourth canto, it comes by the Kal Kanya, and the next canto, fifth, Bhagavatam says, what do you speak? Because I have not read fifth canto. But in the fourth canto, it comes by the Kal Kanya that you will not stay at one place. So how it is?
Daksha has cursed Narada Muni. It is stated in Srimad Bhagavatam very clearly. Which because canto? Of this incident.
Which canto?
This is sixth canto. So it's very clearly described.
But in the fourth, it is also mentioned like that.
Maybe some kalp differences there, kalpa stories. Maybe.
Thank you, Guru.
Hanji. रस मन का विषय है, रस मन का विषय
बुद्धि में आती है ना,
बुद्धि अवलोकन करती है, भावनाएं मन में ही है। शिकायत की भावनाएं, प्रशंसा की भावनाएं मन के स्तर पर ही है। बुद्धि अवलोकन करती है सही गलत का। ठीक है, यही विराम दे। श्रीमद् भागवतम पुराण की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।